नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास, बहुत प्रेरक स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं
जी।
ये गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है।
हाँ।
शीर्षक है, मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, और ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
जी बिल्कुल।
तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार हम जैसे साधारण मनुष्य अपने अंदर देवत्व कैसे जगा सकते हैं और इस धरती को मतलब यहीं स्वर्ग जैसा बनाने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। चलिए इसी को खोलते हैं आज।
हाँ हाँ बिल्कुल। ये उद्बोधन जो है, ये मनुष्य के अस्तित्व के पांच आवरणों पर, जिन्हें पंचकोश कहते हैं,
पंचकोश,
हाँ, उनकी साधना पर केंद्रित है, और इसमें भी खासकर मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश।
अच्छा।
ये बताता है कि भाई इनके जागरण से व्यक्ति और समाज दोनों का ही रूपांतरण कैसे संभव है।
तो शुरुआत मन से होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारा मन कल्प वृक्ष भी बन सकता है और असुर भी।
बिल्कुल।
मतलब इसमें बनाने की और बिगाड़ने की दोनों शक्तियां हैं, तो फिर इसे साधना इतना जरूरी क्यों है?
देखिए, जरूरी इसलिए है क्योंकि बिखरा हुआ जो मन है ना, वो शक्तिहीन होता है।
अच्छा।
उसको साधने का पूज्य गुरुदेव ने बड़ा सरल तरीका बताया है, एकाग्रता।
एकाग्रता,
हाँ। और इसे समझाने के लिए उन्होंने भाप और बारूद के बड़े अच्छे उदाहरण दिए।
जैसे
फैली हुई भाप है या बिखरा हुआ बारूद, उसमें कोई खास ताकत नहीं होती है ना?
हाँ, सही बात है।
लेकिन वही भाप जो बॉयलर में एकाग्र होती है तो वो इंजन को दौड़ा देती है, और बारूद जब वो कारतूस में सिमटता है तो शेर तक को मार गिराता है।
बाप रे।
तो एकाग्र मन में ऐसी ही अद्भुत शक्ति छिपी हुई है।
पूज्य गुरुदेव ने तो अपना ही उदाहरण दिया है ना?
जी हाँ बिल्कुल।
उन्होंने बताया कि 50 साल तक सिर्फ भारतीय धर्म और अध्यात्म पर पूरी तरह एकाग्र रहकर,
हाँ पूरी तरह,
उन्होंने उतना लेखन कार्य कर दिया जितना व्यास जी ने किया था, वो भी बिना किसी गणेश जैसे सहायक के।
हाँ, बिना किसी सहायक के। ये तो एकाग्रता का जीता जागता प्रमाण है उनके जीवन से।
सच में अद्भुत।
बिल्कुल। और देखिए, मन को साधने के बाद फिर अगला कदम आता है, विज्ञानमय कोश का जागरण।
अच्छा, ये चौथा कोश है।
हाँ, चौथा कोश, और इसे देवत्व का कोश कहा गया है।
देवत्व का कोश, इसका मतलब क्या है?
पूजा पाठ नहीं, यहाँ देवत्व का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है, इसका मतलब है एक दिव्य दृष्टि विकसित करना।
दिव्य दृष्टि?
कैसी दृष्टि? मतलब दूर तक देखने वाली, श्रेष्ठता को पहचानने वाली, विवेकपूर्ण नजर, जो सामान्य मनुष्य का छोटा स्वार्थी नजरिया होता है ना, उससे ऊपर उठना।
ये दिलचस्प है। मतलब अपने नजरिए को बड़ा करना। इसमें देवता की पांच विशेषताएं भी बताई गई हैं, जैसे गायत्री माता या शिव जी के पांच मुख।
पांच विशेषताओं का जिक्र है, लेकिन उसमें सबसे खास बात जो है वो है लेने की जगह देने का भाव।
देने का भाव,
हाँ। देवता वही है जो देता है, जो समाज को कुछ देता है, उसे समृद्ध करता है। और यहीं पर, इसी बिंदु पर, पूज्य गुरुदेव स्वर्ग की उन पुरानी धारणाओं की आलोचना करते हैं।
कौन सी धारणाएं? वो जैसे शराब की नदियां होंगी।
हाँ, या हूरे होंगी, अप्सराओं का नाच होगा, इन सब की।
अच्छा।
वो कहते हैं भाई, सच्चा स्वर्ग कोई दूसरी दुनिया में नहीं है, वो यही है, इसी धरती पर।
यही
कैसे? जब हम उदारता से, प्रेम से, सहयोग से एक अच्छा वातावरण बनाते हैं, वही स्वर्ग है
और वही असली संतोष देता है।
और कमाल की बात यह है कि ऐसा स्वर्ग बनाने की ताकत वो हर व्यक्ति में है।
बिल्कुल।
संत इमर्सन का उदाहरण दिया है ना?
हाँ, कि वो नरक में भी अपने लिए स्वर्ग बना लेंगे।
हाँ, तो ये सब नजरिए का ही तो खेल है।
सही कहा, नजरिया और इच्छाएं। इच्छाओं के बारे में भी कुछ कहा है।
हाँ, इच्छाएं। पूज्य गुरुदेव सांसारिक कामनाओं को, मतलब हविष को, कभी न बुझने वाली आग कहते हैं।
आग क्यों?
क्योंकि एक पूरी होती है तो 10 नहीं खड़ी हो जाती हैं। ये अंतहीन दौड़ है। हम भोगों को भोगना चाहते हैं, पर होता यह है कि भोग हमें भोग लेते हैं।
तो क्या इच्छाएं रखना ही गलत है? इसका कोई समाधान है या नहीं?
नहीं, समाधान है। समाधान है इच्छाओं का स्तर बदलना।
स्तर बदलना
मतलब
ये कि सांसारिक चीजों की जो ये अंतहीन दौड़ है, उसे छोड़कर अगर हम इच्छा करें कि हम ईमानदार बने, हम चरित्रवान बने, हम परोपकारी बने।
अच्छा,
तो ये इच्छा तो इसी क्षण पूरी हो सकती है, इसमें कोई देर नहीं लगती।
इसी क्षण? कैसे?
जैसे डाकू रत्नाकर ने चाहा और उसी पल वो महर्षि वाल्मीकि बनने की राह पर चल पड़े। श्रेष्ठ बनने का निर्णय तो हमारा अपना है ना, इसमें कोई बाहरी रुकावट है ही नहीं।
ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, मतलब हम चाहें तो अभी बदल सकते हैं।
बिल्कुल, अभी इसी क्षण। और सच्ची संपत्ति के बारे में क्या कहा गया है? पैसा तो नहीं है सच्ची संपत्ति?
पैसा? अरे पैसा तो सबसे बाहरी चीज है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि असली संपत्ति तो हमारे भीतर है।
हमारे भीतर क्या?
हमारी बुद्धि, हमारा श्रम, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम, सहयोग करने की हमारी क्षमता, ये सब हमारी भीतरी संपदाएं हैं। और इन भीतरी खजानों से हर पुरुष, हर नारी सब धनवान है। और मजे की बात यह है कि इन्हें बांटने से ही मनुष्य देवता बनता है।
बांटने से?
हाँ, देने का सुख पाने के सुख से कहीं बड़ा है, अद्भुत है वो।
तो हमने मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की बात की, इसके आगे सूक्ष्म जगत और आनंद की बात भी है शायद?
जी हाँ, विज्ञानमय कोश का जागरण जो है वो हमें स्थूल जगत के पार ले जाता है, सूक्ष्म जगत से जोड़ता है।
सूक्ष्म जगत?
हाँ, स्रोत में एंटी यूनिवर्स जैसे शब्दों का भी उल्लेख है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हर स्थूल चीज के पीछे एक सूक्ष्म सत्ता काम करती है, जैसे हमारे स्थूल शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी है।
अच्छा, और हमारे अंदर वो जो चक्र बताते हैं, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, ये क्या है फिर?
वो एक तरह से एंटीना जैसे हैं जो सूक्ष्म जगत की शक्तियों और ज्ञान को पकड़ सकते हैं।
ओह, शायद इसीलिए वो दिव्य दृष्टि जैसी सिद्धियां संभव होती होंगी।
हाँ बिल्कुल, उन्हीं से ये सब संभव होता है। और अंत में आता है पांचवा कोश, आनंदमय कोश।
आनंदमय कोश?
हाँ, ये हमारे अंदर आनंद का अक्षय स्रोत है। ये ब्रह्मलोक है जिसे सहस्रार चक्र से भी जोड़ते हैं।
तो इसका जागरण होने पर क्या होता है?
इसका जागरण हमें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है, एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है, परमानंद मिलता है। यही तो है ब्रह्म विद्या का सार, अपने अंदर की इन शक्तियों को वैज्ञानिक ढंग से जानना और जगाना।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ सार यही निकलता है कि मनुष्य के भीतर ही देवता बनने की और इसी धरती को स्वर्ग बनाने की असीम संभावना छुपी हुई है।
बिल्कुल,
ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी, वो हमारे अपने पंचकोशों में ही मौजूद है।
एकदम सही कहा, और ये सब इन कोशों को जगाने से ही संभव है। पर यही एक गहरा सवाल उठता है।
क्या सवाल?
सवाल ये कि कोई व्यक्ति, कोई भी साधारण इंसान, अपने भीतर इन कोशों को जगाने और इस देवत्व की ओर बढ़ने की यात्रा वो आज, मतलब इसी क्षण कैसे शुरू कर सकता है?
कैसे?
कैसे वो अपने जीवन को बदलते हुए इस धरती को सचमुच स्वर्ग जैसा बनाने में अपना योगदान दे सकता है? ये सोचने की बात है, और शायद अमल करने की भी।